परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया, 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
तो उन्होंने क्या स्कीम बनाई हिंदू और मुसलमानों के गुरुओं ने इकट्ठा बैठ के आपस में सलाह की कि इसके साथ ऐसा करते हैं। वो कैसा किया, सभी ने एक अपना षड्यंत्र रचा। उस षड्यंत्र के तहत सबको पत्थर डाल दिए, किनको, जो भी कोई साधु संत थे, और सबके डेरे आश्रमों में पत्थर डाल दिए कि भी एक कबीर नाम का सेठ है, कबीर दुलाह है, बहुत बड़ा धनी व्यक्ति है, और वो भंडारा करेगा। उसमें लिख दिया 3 दिन तक भंडारा चलेगा और ये पकवान होंगे। वो पकवानों की लिस्ट लिख रखी उसमें, लड्डू, जलेबी, खीर, हलवा, पूरी, और साथ में ये लिख दिया कि प्रत्येक भोजन के उपरांत, यानी सुबह का भोजन जितने खाओगे, प्रत्येक को एक दोहर दी जाएगी। दोहर मान ऐसा समझ लो आजकल का यो बहुत बढ़िया कंबल होता है वो, और 5 असरफी, 5 लोहे सोने की मोहर, मतलब एक दोहर और 1 असरफी, 1 सोने की मोहर यानी 10 ग्राम सोना, 1 तोले की होती थी वो। अब वर्तमान में 10 ग्राम सोने का 1 तोले की कीमत लगभग 20,000 हो रही है। और उसने लिख दिया कि जो भी आएगा खाना खाने के लिए साधु संत फकीर, उनको एक तो दोहर दी जाएगी और एक साथ में मोहर यानी 10 ग्राम सोना, और सभी आना। नीचे लिख दिया कबीर जी पूरा एड्रेस। अब ये संत साधु मंडलेश्वर बड़े लालची होते हैं, ये बड़े बड़े डेरे बना लेते हैं, उनमें 100 सैकड़ों की संख्या में अपने शिष्य होते हैं इनके। तो उस महंत ने, लालची ने, अपने सारे शिष्यों को साथ ले लिया कि सभी खाना खाएंगे, सभी को एक एक दोहर एक समय में मिलेगी, एक मिलेगी असरफी यानी 10 ग्राम सोना प्रत्येक को, तो वो सारा मेरा ही होगा, वो मुझे दे, मेरे पास जमा कराएंगे ही कराएंगे। तो ऐसे पूरे भारतवर्ष के दूर तो इराक ईरान तई के सबको, यानी साधु संत फकीर, आप अपने शिष्यों को साथ लेकर कति चूल्हा नोत कर दी। ऐसे कहते हैं 18 लाख व्यक्ति, 18 लाख ये साधु संत फकीर, कोई नागार कोई बिना नागार, ये सब तरह के सट दर्शनी सारे इकट्ठे हो गए। तो वहां कबीर परमेश्वर जी और रविदास जी ज्यादातर इकट्ठे रहते थे। रविदास जी अपने घर से सुबह सुबह झोपड़ी से फ्रेश होने के लिए निकला। उसने देखा दुनिया, जहां देखा पूरा मेला भरा हुआ। तो रविदास जी ने पूछा उन लोगों से, साधुओं से, कि महात्माओं आज कोई समागम है क्या? तो उनसे सभी काशी वालों ने पूछ लिया था, जो भी उठ के जाता था ये प्रश्न करते थे। तो वो साधु आए हुए जो भक्त फकीर थे वो कहने लगे, रे काशी वालों, तुम कौन सी दुनिया में रहते हो? तुम्हें नहीं पता कि यहां बहुत बड़ा भंडारा होने जा रहा है आज? रविदास जी ने पूछा, कौन कर रहा है? कि कबीर दुलाहा, नीरू का पुत्र, सारा एड्रेस है। रविदास जी ने कहा, कोई पत्र है आपके पास? कहां, देखो ये रहा पत्र। यानी सब दो चारों से पूछा, सब ने दिखा दिया। वो देखा, तेरा गजब हो। अब रविदास जी तो समझ गए भाई, काम बिगाड़ दिया निकम्मा ने, झूठी चिट्ठी ला डाल दी दिखे। तो कबीर परमेश्वर जी की झोपड़ी पर पहुंचे रविदास जी और कहने लगे, परवरदिगार आज काशी छूटेगी अपनी, आज ये शहर त्यागना पड़ेगा अपन को। कबीर जी कहने लगे, क्या बात होगी कि आपके नाम ते और झूठी पत्र डाल रखे हैं कि कबीर भंडारा करेगा और मोहर देगा सरफी, यानी दोहर देगा सरफी देगा, और तीन दिन का लिख रखे, लाखों लोग आए हुए महाराज जी। अब परमात्मा लीला कर रहे थे, कौन जाने उसकी, ये ठगवाड़ा ठगी देश खरासियाना बहुता बार धानक रूप रहा करता। रविदास जी से कहने लगे, भगत आ जा, बैठ जा, अंदर आ जा मेरे पास और कुंडी ला दे, झोपड़ी का कुंडी लगा दे और आज घर से बाहर नहीं निकलांगे आप। रात को मैं अपने बच्चों को, अपने माता मो बोले माता पिता को, इन बच्चों को लेकर चला जाऊंगा, कहीं दूर भाग जाऊंगा, ये दुष्ट मुझे जीने नहीं देते। अब रविदास जी बैठ गए, अकबर के इलाज है, इतना हमारे हमारे पास तो खाने का अन्न भी नहीं है और ये सारी काशी भी नहीं, सारी काशी शहर भी नहीं इतने व्यक्तियों को भोजन करा सकता। तीन दिन जब उनकी दाल चून उठा लिया तो भी नहीं पूरा पट सकता। बैठ गए। अब परमात्मा की वाणी में लिखा है कि कबीर जी एक एक रूप में तो वहां बैठे रविदास जी के पास, के माला ले ले भजन कर, भगत भगत की भगवान सुना करे। अप पारती अप साज अप किंगर अप बज अप ताल झां झनकारा आप नचे आप देखनारा, कह कबीर से आरती गाऊं अप मध्य आप सुना। तो वहां से पहुंचे सतलोक के अंदर, यहां से टेलीफोन कर दिया मालिक ने कि तैयार करो इतने सारा सामान। जब वहां पहुंचे कहते हैं असंख्य बैल बना के, वहीं के भगत वहां के हंस वो आत्माएं बैल बनी और कुछ बंजारे बनकर साथ चल पड़े, साथ वहां खड़े हो गए। जैसे बंजारा यहां पर कैसे होते थे बंजारे, पहले बंजारा होते बणज करने वाला, यानी व्यापारी लोग ऐसे व्यापार किया करते थे। जैसे किसी एक मार्केट से मंडी से आटा दाल या बूरा भर लाए, कैसे बैलों के ऊपर एक थैला डाला करते, जैसे गधों के ऊपर थैला डालते हैं बोरा, ऐसे बैलों के ऊपर बोरे रखा करते, उनको गुण बोला करते, गुण, और उसको बॉडी भी बोलते हैं बॉडी। तो ऐसे बैलों के ऊपर थैले डालकर उनमें बूरा या बाजरा जवार भरके एक मार्केट से दूसरे शहर में बेचने जाते थे वो व्यापारी, उनको बंजारे बोलते थे। तो वो सैकड़ों की संख्या में बैल रखते थे, एक बैल के ऊपर लगभग एक मन डेढ़ मन तक वो वजन रख लेते, तो सैकड़ों मन वजन को लेकर के वो बैलों के द्वारा दूसरी मार्केट में व्यापार किया करते, उनको बंजारे बोलते थे। उनके साथ एक दो चार और भी सहयोगी होते थे, उनका एक मुखिया होता था जो बंजारा होता था, उसके साथ में उसके नौकर होते थे। तो ऐसी ही लीला की मालिक ने, सतलोक में पहुंचे और वहां उनके टेलीफोन किया था वे ऐसे तैयारी करो, कहते असंख्य बॉडी पर तैयार करती, असंख्य बैल, असंख्य बैलों के ऊपर सारा सामान बनाया बनाया, चावल आटा दाल घी और पूरी बनी बनाया, हलवे उसमें ठोक दिए। तो वहां जब परमात्मा कबीर जी पहुंचे तो वहां सबने हाथ जोड़कर कहा कि लो भगवान जितने चाहिए ले चलो, आपका आदेश आया था। उनमें से 9 लाख बैल लेकर और 100-200 बंजारे लेकर, 1000-1500 बंजारे जो सेवादार दिखाई दे वहां पर सेवा करेंगे, तो उनको सबको लेकर के और स्वयं ही केशव नाम का बंजारा दूसरा रूप बना के परमात्मा और काशी के चौपड़ के बाजार में आ गए। बहुत बड़ा अक्षेत्र था, वहां पर खाली स्थान था, तो वहां टेंट ला दिए, अपना सामान रखवा दिया भंडारे का, और सामने वो पहले ये फर्श से होते हैं ना, इस प्रकार के जैसे ये फर्श आजकल स्कूलों में जैसे यहां खाना खाने के लिए बिछाते हैं ऐसे फर्श टाट, तो वो पहले कपड़ा बिछाते थे सफेद, ये हाथ से बना हुआ इसे साइज का होता था, इतना बनाते थे खड्डी से बना हुआ, तो वो लंबे लंबे कुआ बिठा दिए मालिक ने, खुद ले रहे थे और बैठो भाई भोजन पर करो शुरू, और आप एक अलग टेंट में बंजारा रूप धारण करके बैठिए। ओहो, और भंडारा शुरू हो गया, उधर से रविदास जी के पास बैठे हैं, उधर केशव बनकर यहां बैठे हैं, एक रूप में पूरे ब्रह्मांडों को सतलोक में चला रहे हैं। उधर से शेख तकी के पास, शेख तकी की तो स्कीम थी ये, सिकंदर लोदी जी को, राजा को, दिल्ली के बादशाह को भी पत्र दे दिया और उसमें विशेष रूप से लिख दिया कि आपको अवश्य आना है, आप मेरे शिष्य हो। तो शेख तकी ने कहा आपके गुरुजी भंडारा कर रहे हैं, चलोगे क्या? सिकंदर लोदी कहने लगा जी जरूर चलेंगे, अवश्य चलेंगे, तैयारी करो। हाथी पर बैठ कर दिल्ली का बादशाह काशी पहुंच गया, हजारों की संख्या में सैनिक उसके साथ, बॉडीगार्ड। अब शेख तकी जब ने तो यह सोचा था कबीर तो भाग गया होगा, वहां कोई नहीं मिलेगा और आज राजा की फड़क निकल जाएगी जिसको भगवान कहता था। वहां जाकर देखा शेख तकी ने तो वहां तो भंडारा चलन लग रहा, जय जयकार हो रही, कबीर जी की जय जयकार, वह बड़ा भंडारा खाया रहा, इसे मोहन भोजन कितना देखे ना सुने, जो भी रोटी भोजन खावे और पेट पर हाथ फेरे ने कहो वह कसूते छकिए, अब बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत बड़ा अच्छा भोजन बनाया, सभी नो कर जय हो इसे कबीर भगवान की, जय हो कबीर सेठ की। इवन के मेरा वो तो सेठों का भी सेठ था, सेठ हैं और थे और रहेंगे। अब शेख तकी ने तो कलेजा पकड़ दिया और बैठ गया एक लवाजा कर, तेरा गुजब हुई तो भंडारा चल रहा है, नहीं बनी बात। और सिकंदर लोधी ने पूछा भी ये भंडारा कौन कर रहा है, तो वो कहने लगे कि कबीर भंडारा कर रहा है, कहां है वो कबीर जी, कहां है, हमने नहीं पता, इस टेंट में बैठा है एक व्यक्ति वही होगा। तो वहां जाकर देखा, पूछा भी आप कौन हैं, जो केशव रूप में परमात्मा विराजमान थे सिकंदर लोधी राजा ने पूछा कि आप कौन हैं, क्या लगते हो कबीर जी के। उसने कहा परमात्मा ने यानी केशव रूप में जो बैठे थे कहा मैं कबीर जी का पगड़ी बदल यार हूं, यानी वो मेरा पगड़ी बदल मित्र है, मेरे पास एक चिट्ठी गई थी कि एक छोटा सा भंडारा करना है, कुछ सामान लेते आइएगा, ये उसके आज्ञा का पालन, अपने मित्र की आज्ञा से मैं सामान लेकर आया हूं, मैं केशव नाम का भंडारा हूं। अब रत्रा गजब हुई, शेख तकी ने सुना है कि इसने तो छोटा भंडारा कहे हैं जिसमें 18 लाख आदमी भोजन पा रहे हैं। तो शेख सिकंदर लोदी ने पूछा कि कबीर जी कहां हैं, वो क्यों नहीं आए, वो कहां है, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं। तो केशव रूप में विराजमान केशव ने कहा कि उनका दास जो आया है उनको क्या हो सकता है, वो तो मालिक है, परमात्मा है। अब सिकंदर लोदी ने कहा कि अभी दर्शन करेंगे, पहले पाछा भोजन करूंगा, पहले गुरुजी के दर्शन करके आते हैं। अब वहां अपने हाथी पर विराजमान राजा पहुंच गया सिकंदर शेख परमात्मा की झोपड़ी के पास, हाथी से नीचे उतरा, सैनिक साथ थे, प्रोबॉडी गार्ड, स्वयं जाकर के कबीर जी की झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। अब रविदास जी कहने लगे महाराज जी ये तो यहां भी आगे दिखे, क्यों खटखट खटखट होती सुनी आवाज घोड़िया की उनको हाथी की आदमी हजार आदमी आवे तो लला लला होती तो आया करे। कबीर जी बोले भाई तो बोला मत, देखी जाएगी भगत, वो आप रखेगा जिस जिसकी आश्रित बैठे हैं हम। पुणात्मा ये हमारे लिए संदेश दे रहे थे परमात्मा कि आप इतना दृढ़ विश्वास रखना अपने मालिक पर, चाहे कोई आपत्ति आती दिखे और उसकी भूल उसके उसी की याद रखना, आप संभालेगा समय आने पर। कहते कल्पे कारण कौन है कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे तक काम। अब यहां धनी का काम था, जीव के बस का नहीं था इतनी आपत्ति को टाल देना, चाहे कितना सेठ हो। तो फिर आवाज लगाई कि परवरदिगार दरवाजा खोलना, आपका भक्त सिकंदर आया है दिल्ली से, आपके दर्शन करना चाहता है। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि हे राजन, मेरे साथ इन लोगों ने बहुत बुरा कर दिया और मैं दरवाजा खोलू नहीं, ये तो मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। और आज रात को मैं अपने बच्चों को, मुंह बोले बच्चों को, अपनी माता पिता परिवार को, मुंह बोले माता पिता को, यहां से लेकर चला जाऊंगा, अंधेरे में निकल जाऊंगा, मैं कहीं दूर जाकर बसूंगा, ये लोग मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, मेरा जीवन हराम कर रखा है इन लोगों ने और मैं दरवाजा नहीं खोलू। तब सिकंदर लोदी ने कहा, परवरदिगार आप किसी और को बहका सकते हो, इस दास को नहीं, मैंने आपको बहुत निकट से देखा है, आप दरवाजा खोलो, एक बार दर्शन तो दे दो अपने दास को, दर्शनार्थ आया हूं। तब परमात्मा ने, कबीर जी ने कहा, रविदास खोल दे फाटक, दरवाजा खोल दे। रविदास जी ने साकल खोल दी। सिकंदर लोदी ने मुकुट समेत दंडवत प्रणाम किया, सामने लेट कर परवरदिगार के चरणों में, कबीर जी के चरणों में। सिकंदर लोदी दिल्ली के बादशाह, और कहा, परवरदिगार वहां तो आपने जय जयकार कर रखी है, इतना भंडारा है परमात्मा नो कति, जो जो भी खाना खाओ आपके जय जयकार कर रहा है, और आपका मित्र वहां भंडारा दे रहा है, केसो नाम बता रहा है प्रभु, एक बार चलो, सभी ये देखना चाहते हैं श्रद्धालु भक्त साधु संत कि एक बार उस कबीर जी के दर्शन तो करें, जिसने ऐसा व्यवस्था की है, ऐसा मोहन भोजन खिलाया है, वो ऐसा भगवान कौन है, ऐसा पुण्यकर्मी प्राणी कौन है, आपके दर्शनार्थ दर्शन के लिए तड़फ रहे हैं, एक बार चलो परवरदिगार। तब कबीर परमात्मा जी खड़े हुए अपनी झोंपड़ी से बाहर आए, कहते आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी कबीर परमेश्वर पर, बोलो सतगुरुदेव। अब कबीर जी झोपड़ी से बाहर आए तो आकाश से फूलों की वर्षा होनी शुरू होगी, आप ऊपर से अपने आप प्यार से काफी देर वर्षा हुई, और रविदास जी चंवर लेकर के आदर से कबीर जी के पीछे पीछे चंवर कर रहे थे उनके सिर के ऊपर। तो सिकंदर लोदी ने कहा, रविदास जी मुझ दास को ये चंवर दे दो, आप तो रोज ही सेवा करते हो भगवान की, मुझे भी अवसर दे दो। तो रविदास जी ने चंवर दे दिया, वो दिल्ली का बादशाह अपने गुरुदेव पर चंवर कर रहे हैं, और हाथी के ऊपर बैठा तीनों, रविदास जी को भी और कबीर जी को, और स्वयं भी बैठ गया हाथी में। हाथी के ऊपर एक रूम बनाया जाता था, अंबारी बोलते थे उसको, हाथी के ऊपर एक छोटा सा कैबिन सा बना दिया करते थे, तो उसके गेट होते थे दोनों तीनों चारों साइड में, तो उसको तीनों गेटों को ऊपर उठवा दिया और अंबारी का खोखा खोखा रह गया, उसमें बैठ गए, ताकि सिकंदर लोदी चाहता था कि सब देखें दर्शन करने को कबीर भगवान के, चारों तरफ से सिकंदर लोदी परमात्मा के ऊपर चंवर कर रहा है, और पूरे भरे बाजार में से निकल कर आ रहे हैं, सब पूछ रहे हैं कौन है कबीर के, ये कबीर है, ये चंवर कौन कर रहा है कि ये राजा है, दिखता नहीं मुकुट पहरे बैठा है। तो दिल्ली के बादशाह और कबीर जी पे चंवर कर रहे हैं, आधे लोगों का कलजा तो उड़े पाट गया, ये तो भाई परम शक्ति है। और जब वहां पहुंचे, भंडारा देखा, सारे भंडारे में घूम घाम का देखा, इधर उधर का, और जो भी कहे कौन है कबीर के, वो बैठा सामने, वो जिसके ऊपर ये चंवर हो रहा है ना, ये है कबीर, ये है कबीर जी, ये है कबीर जी। सब खड़े होकर इन्हों के निहाल कर दिए, आपने बहुत अच्छा भंडारा किया, जय जयकार हो आपकी। वो साधु संत आखिर में फिर क्या हुआ, फिर क्या होता है कि एक व्यक्ति, एक नौकर केशव बंजारे ने भेजा और कहा कि आपको आपका मित्र, आपका दोस्त केशव याद कर रहा है, परवरदिगार दर्शन देना। सिकंदर लोधी, कबीर जी, रविदास जी हाथी से उतरे और केशव के टेंट में चले गए और वहां जाते उस टेंट में कहते हैं अपने आप रवि परमात्मा तो पहुंचे थे टेंट के पास। टेंट का पर्दा हटा दिया सामने से, बहुत लंबा चौड़ा टेंट था, उसमें अपने आप एक तख्त आया, एक तख्त अपने आप आकर ऐसे डल गया। उसके ऊपर सेकंडों के हिसाब से, जैसे कंप्यूटर में आप देखा करो नो, एक मिनट में पता नहीं क्या होता कि दिखाई दे, ऐसे उस ओरिजिनल इस प्रकार वहां बहुत अच्छे सुंदर गद्दे आ गए, अपने आप उनके ऊपर चद्दर बिछ गई, चारों तरफ हीरे पन्ने ज्वाड़ा जड़े हुए और उस पर उसने केशव ने कहा खड़ा होकर के बैठो परवरदिगार। तो परमात्मा वहां विराजमान हुए, राजा नीचे अपने गुरुजी के चरणों में जमीन पर विराजमान हुए। तो वहां कहते हैं, लिखा है गरीबदास जी ने कि 8 पहर तक यानी 24 घंटे सत्संग चला। अपने आत्माओं कहते हैं ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिले सो निश्चय दिए। वहां लाखों 18 लाख व्यक्ति आ रहे थे और जब वो सत्संग, भोजन तो कर लिया दिन में, शाम के समय फिर सत्संग शुरू हुआ। अब भोजन करें, रोटी सुबह खा ली फिर शाम ना खा लें, बीच का समय जो फ्री में था वो उस सत्संग शुरू कर दिया मालिक ने। 24 घंटे तक सत्संग चला। केशव प्रसन्न करता है, कबीर जी उत्तर देते हैं। केशव प्रसन्न करता है, कबीर जी उत्तर देते हैं और सुन रहे हैं सभी जो बाहर से आए, क्योंकि जो साधु संत बने हैं या कोई भी कोई साधना कर रहा है, चाहे हिंदू बनकर, मुसलमान बनकर, सिख या ईसाई बनकर, तो पुण्य आत्मा होती है, उनको परमात्मा की चाह होती है और ऐसी ही आत्मा भगवान को शीघ्र ग्रहण करती है ज्ञान को। तो वो सब बैठ गया उस पास और मालिक की लीला थी उसकी तय, वहां बोल रहे और सुने सब ने। एकता हम 100 स्पीकर ला रहे हैं, तब भी लास्ट में मुश्किल तो सुनता होगा, 200-300 स्पीकर ला रहे हैं और उसमें तो मालिक वहां बोल रहा है, सब ने आकाशवाणी की तरह आवाज सबके ऊपर बौछार हो रही है, सब सुन रहे हैं। तो वहां लाखों, कई लाखों की संख्या में कबीर जी के उपदेशी बने हैं। अब उन दुष्टों ने चाहा था इसको मिटा दें, इसका नाश कर दें, भाग जाए यहां से छोड़ के इस क्षेत्र को, और वहां कई लाख व्यक्ति परमात्मा के चरणों में आए। उन साधु संतों ने छोड़ दिया अपना बाणा, फेंक दिया वो सब अड़ंगा, जब ज्ञान पूर्ण हो गया 24 घंटे में डूडा ठा दिया मालिक ने, सारे हर तरह की विचार दिए, हिंदू और मुसलमान सब के बारे में जानकारी दी, कबीर जी के शिष्य हुए। और तीसरे दिन जब भंडारा समाप्त हुआ, सारा सामान उठा लिया, टेंट अपने कट्ठे कर लिए, बैलों के ऊपर लाद लिए और सैकड़ों हजारों की संख्या में वो साथ में बंजारे आए हुए थे सतलोक से पुण्यात्माएं, उनको केशव ने कहा कि चलो तुम ले चलो बैलों को, मैं आ रहा हूं। अब उन बैल चलते कर दिए लाइन में, पंक्ति में एक दूसरे के पीछे आगे पीछे चलते कर दिए। अब 9 लाख बैल और उनकी 100-100 लाइन बना दे तब भी कितनी लंबी हो जाएगी, कम से कम 4 किलोमीटर। ऐसे वो बैल चल पड़े और गंगा पार कर गए। गंगा को पार करने लगे, एकदम जल नीचे को हो गया, घुटने घुटने पानी में से सब बैल और बंजारे पार हो गए। फिर वही दरिया फुल होकर चल पड़ी, दरिया के किनारे पर ही वो चौपड़ का बाजार जो है उसके आस वहीं था जहां मालिक खड़े थे, दरिया के साथ में ही खड़े थे। अब दरिया पार होकर के कुछ देर के बाद वो बातें करते रहे सिकंदर लोदी और कबीर जी और केशव खड़े खड़े। तो सिकंदर लोदी ने कहा कि हे केशव, आपके बैल बहुत दूर चले गए होंगे, आप देर हो जाएगी, आप जाना आप चले जाइए। तब कि देखा उधर सिकंदर लोदी ने इधर ध्यान किया कि तुम्हारे बैल तो बहुत दूर चले गए, देखा कहीं बैल दिखाई नहीं दे रहे। अरे बैल कहां गए? अब कबीर परमेश्वर ने कहा कि जहां से आए थे वहां गए, क्योंकि इतने बैल और इतनी दूर तक चाहे वो शाम तक देख ले तब भी दिखे, इतने बैल तो भी ना खत्म हो। इतने में क्या हुआ कि कबीर जी के अंदर वो केशव जो अलग रूप था मालिक का, वो कबीर जी में समा गया। देखते ही देखते अकेले कबीर जी रह गए और वो बैल भी नजर नहीं आए। बोलो सतगुरुदेव। अब सिकंदर लोदी कहते पक्की जचगी, तो परमात्मा है, चरणों में पड़ गए, मालिक ही सारा आपका ही खेल था। और परमात्मा कहते नहीं, मैं तो दास हूं उस परम पिता का, मैं तो दास हूं उस परम पिता का, वो आप ही कर रहे हैं। क्योंकि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोले, लाल नहीं कहता लाखों कीमत है मेरी, जोर ही परख लिया करते हैं। तो परमात्मा कबीर जी की महिमा को उससे परिचित ही भक्त जान सकते हैं। अब उसके बारे में थोड़ी सी आपको सुनाते हैं। अमृतवाणी, सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। सिमटे भेक इकट्ठा हुआ, काजी पंडित माही, गरीब दास चिट्ठा फिरा वो जम्बू दीप सब ठाही। गरीब दास साहिब जी ने परमात्मा कबीर जी से परिचित होने के उपरांत सतलोक में परमात्मा को देखा और फिर यहां दूसरे रूप में यहां भी देखा था, उनके सामने आए थे। उसके बाद परमात्मा कबीर जी ने संत गरीबदास जी का ज्ञान योग खोल दिया था, उनको दिव्य दृष्टि दे दी थी। अब जिसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, लाखों वर्ष पहले की बीती हुई घटनाओं को भी यथार्थ चित्रात कर देता है। ऐसे गरीबदास जी ने वो उस समय की बीती हुई घटनाएं जैसे चलचित्र की तरह चलती हुई ऐसे देखी और अपनी वो अमृतवाणी में लिखा। मसलत करी मिलाप से जीवन जन्म कुछ नाही, गरीब दास मेला सही ही भेक से मट्टे ताही। सेत बंद रामेश्वर द्वारका गढ़ गिरनार, गरीब दास मुल्तान मग आए भेक अपार। हरिद्वार बद्री बेनोद गंगा और केदार, गरीब दास पूरब सजे ना कुछ किया विचार। 18 लाख दफ्तर चढ़े अस्थल बंद मुकाम, गरीब दास अनाथ जीव और के ते उस धाम। यानी 18 लाख तो ये साधु संत आए थे और जीव बाकी के थे वो काशी आले आसपास के वो न्यारे। अब जो संत वहां आए थे वो किस प्रकार की साधना करने वाले थे? बजे नगारे नौबता तुरही और नरसिंह रण सिंह, गरीब दास झूलन लगे उर्दम की बो पिंग। एक आख दतूरा चाबत है एक खावे खड़गास, गरीब दास एक अर्धमुखी ही एक जीम में पंच गिरास। एक पंचंगनी तपत है एक झरने बैठंत, गरीब दास एक उर्दमुख नाना विधि के पंथ। एक नगन कोपनिया इंद्री खेच बधावे, गरीब दास ऐसे बहुत गर्दन पर धर पावे। यानी वहां जो भी संत साधु आ रहे थे वो अपनी अपनी सुबह सुबह की जो क्रिया करते थे, कोई किसी प्रकार की कर रहा था, कोई किसी प्रकार की कर रहे थे, फिर परमात्मा ने यथार्थ ज्ञान देकर के उनके उस अंधेरे को हटाया, उनके मोती अबिंद का ऑपरेशन किया। अब क्या बताते हैं? भेख देख रे दास जी गए कबीरा पासे, गरीब दास रविदास कहे आज छुट्टा कसी बासे। भेख देख कर रविदास जी गए कबीरा पासे, गरीब दास रविदास कहे आज छुट्टा कसी बासे। अब परमात्मा क्या बोले, रविदास जी ने जाकर कहा कि हे भगवान, आज तो काशी छूटेगी अपनी, इस काशी से जाना पड़ेगा अपन को। कबीर जी क्या बोले, लाए तार लोलीन हो रूप विहंग माही, ग्रीव दास जुलाहा गया अगम पुरी निज ठाही। लाए तार लोलीन हो, बैठ गए परमात्मा ने भक्ति की मुद्रा में, साधारण से अपना, जैसे आदमी जब चिंतित सा हो जाता है, आंखें खुली रहती हैं लेकिन वो बोलता किसी से नहीं, ऐसी स्थिति में हो गए। कहते हैं गरीबदास जी कह रहे हैं कि जुलाहा, वो परमात्मा कबीर जुलाहा गए अमरपुरी निज ठाही, अपने निज स्थान पर पहुंच गए एक सेकंड के अंदर। जहां बॉडी संख असंख्य सूर्य बंजारे और बैले, गरीबदास अवगत पूरी हुई काशी को सैल, जर्द सेत और हरे न गए बॉडी भरी अनंत, गरीबदास ऐसे कहा लो कबीर भगवंत। वह असंख्यों बॉडी असंख्यों बैलों के वो लाइन ला रखी थी और कहा ले लो कबीर भगवान, आपके आदेश अनुसार ये तैयार है। वो खाकी खंजों से पूरे अंजल का अधिकार, गरीबदास ऐसे कहा सुन तू सृजन हारे। ओए होए, वहां के भक्तों ने, सतलोक वाले भक्तों ने कहा कि वो तो खाखी कंजूसपुर, वो लोक कति कंगालों का है, 21 ब्रह्मांड को कंजूसों का लोक बताया खाखी। अब यहां पुण्यात्माओं, दो वर्ष वर्षा ना हो तो सारे बिलक का मर जा, तड़फ का मर जाओ, और कभी वर्ष कुछ नहीं हो रहा, कभी ओले पड़ गए कि तो कुछ हो गया, सूखा गिर गया कि तो फलट गणी आ गई, बिरानवेटी सब की हो रही है, तो उसके लिए कह रहे हैं वो तो कति कंजा खोखापुर है, खाखी खंजूसपुर, वहां अन्न का नहीं अधिकार है, वहां तो अन्न भी ढंग का कोई ना। और गरीबदास ऐसे कहा सुन तू सृजनहार, हे सृजनहार, हे कबीर भगवान, आप जिस लोक में गए हुए हो वो तो कति कंगाल है, वहां इतने आदमियों की भोजन बाहर कहां से आवे। अनंत कोट बालद सजी ताश लई 9 लाख है, अंत करोड़ बैल खड़े थे, कहते उनमें 9 लाख लेकर परमात्मा चल पड़े। गरीबदास केशव कला एक पलक पुरज आंखे, केशव रूप धारण करके एक पलक में सतलोक से, कहते एक पलक में यहां आगे मालिक सबको लेकर के, वो तो रग जो एक पलक में थे, एक पग भी ना उठे मारा, इतनी दूर जाना चाहता, वो सतलोक से 16 शंख कोस से चलकर मालिक सेकंडों में सब ने लेकर और वहां आके विराजमान हो गए। अंतकोट बालद सजी ताश लई 9 लाख, गरीबदास केशव कला एक पलक पुर जांख, जहां कल्प ऐसी करी चौपड़ के बाजार, गरीबदास तंबू तिरने वहां पचरंग झंडे सार, खुला भंडारा गैब का बिन चिट्ठी बिन नाम, गरीबदास मुक्ता तुले धन के सो बलि जाम, जिन्ने झनवा तुलत हैं बूरा घृत और दाल, गरीबदास आटा अटक लेवे मुक्ता माल, कस्तूरी पान मिठाइयां के भोजन बना रखा था, लड्डू जलेबी चंगेर, गरीबदास नुक्ति ने रख ऐसे जैसे भंडारी कुबेर, बिना पकाया पक रहा, कहते ना तो वहां कोई चूल्हा बाल रखा, किसी ने फुर्सते ना थिया देखने की, खावा थे अपना जी साले थे, अभी पक्के कितना है, इतना अन्न कहां से आ रहा है, कहां इनके भंडारे, वो रसोई घर है, वो तो बना बनाया ला रहे थे मालिक सतलोक थे, बिना पकाया पक रहा ये उतरे अरस खमीर, गरीबदास मेला शुरू वहां जय जय होत कबीर, सकल संप्रदा तृप्ति 3 दिन जो मारे, गरीबदास सट दर्शनम सीधे गंज अपारे। ओ तरग जबैया, कहते हैं सभी संप्रदाय जो आई हुई थी सबको तृप्त किया, और किसी ने सीधे, ये बेईमान चलते अन्यों के सीधा भी दे, वो सीधा आटा चावल घी जो मांगे वो नारा दिया छक्के गए हुए अलग से जो आसपास के थे। सा सिकंदर को सुनी धन कबीर बल जाऊं मैं गरीब दास मेले चलो मम हृदय धर पाऊं। कह कबीर सुन साहा तू बेक बिगाड़ा काम। अब जब सिकंदर लोदी परमेश्वर कबीर जी की कुटिया पर गया तो उसने कबीर जी से कहा कि आप मेरे मेरी प्रार्थना सुनो, मेरे सिर पे पैर रखो मालिक और चलो एक बार वहां पर। तो क्या कहते हैं, कह कबीर सुन साहा तू बेख बिगाड़ा काम। गरीब दास कैसे चलूं हूं मो गठेरी नहीं दाम। अब गरीब दास जी कह रहे कबीर जी ने बोले कि भगवान के ऊपर चालू मेले मेरे पास तो चोरनी भी कोनी। कितने अधीनी से बोल रहे हैं, नहीं नहीं इस काशी में सा कोई, मेरा तो कोई सेठ भी जानकार नहीं है इस बनारस में काशी में। नहीं काशी में सा कोई मुझे उधारा देत, मुझे तो कोई उधार भी ना दे गरीब आदमी को। गरीब दास ताना तनु हूं तब कुणबे की सुध लेत, मैं तो कपड़ा बनता हूं अदब अपना परिवार पोषण कर रहा हूं, इतने व्यक्तियों को मैं ये राजन कैसे आहार कराऊंगा। मैं आधीन अनिकट हूं उदर भरे नी मोही, गरीब दास माता दुखी और मो मन है छोवे। अब क्या कहते हैं कबीर, वो सिकंदर लोदी क्या कहते हैं, ए कबीर तुम अल्लाह हो पलक बीच परवाह, गरीब दास कर जोर कर ऐसे बोलत सा। उस राजा बादशाह कहता है ए कबीर तुम अल्लाह हो पलक बीच परवाह, तो एक मिनट में एक पल में किरा के कर दे मालिक। और गरीब दास जी कहते हैं कर जोड़ कर ऐसे बोले सा। वो सिकंदर बादशाह ने बोला आप तो परमात्मा हो, एक पलक में कुछ भी कर दो दाता। तुम दयाल दरवेश हो धर आए नर रूप, तुम तो दयालु संत हो आप तो, और आप नर रूप धर के आगे आप तो परमात्मा हो। तुम दयाल दरवेश हो धर आए नर रूप, गरीब दास ऐसे कहे सहा सिकंदर भूप। उठे कबीर कर्म किया बरसे फूल आकाश, गरीब दास मेले चले वो चौर करत रविदास। तीन एक चैंडोल में रे दास सहा कबीर, हाथी के चैंडोल में उस हाथी की उस कैबिन में ये तीन जने बैठे थे, रविदास जी सिकंदर लोधी और कबीर जी। तीन एक चैंडोल में रविदास सहा कबीर, गरीब दास चौर करे वहां बाद सहा बलबीर। फिर रविदास जी से सिकंदर लोधी ने कहा यह सेवा मुझे भी दे दो, मैं भी अपने गुरु जी की सेवा कर लू। मुकुट मनोहर बांध कर चढ़े फील कबीर, सुंदर मुकुट पहर के बैठे मालिक वहां पर, एक सेकंड में कितना जकेरा के मालिक के लिए। गरीब दास पुरी में कोई न धरता धीर, के सोच ले कबीर पर कबीर कष्ट क्यों कीन, गरीब दास हस्ती चढ़े ये मेला देखन तीन। अब केशव रूप में परमात्मा बैठे थे, केशव आके कहने लगा कबीर जी को हाथ जोड़कर कहने लगे कि आपने क्यों कष्ट किया यहां आने का, आपका दास जो बैठा था। चौपड़ के बाजार फिर आए केशव पास, गरीब दास कुर्बान गति ही क्या क्या कहूं बिलास। चौपड़ के पाट पटंबर बिछ गए ऊपर हीरे लाल, गरीब दास साहेब दरनी ही लाए मुक्ता माल। पाट पटंबर बिछ गए अपने आप उस तंबू में तो टेंट के अंदर वो तकत बिछ गया मालिक के लिए आसन के लिए, बहुत सुंदर उसके हीरे पन्ने जवारात लग गए। केसो और कबीरे का तंबू माही मिलाप, गरीब दास आठ पहर लग गोष्ठी निज गरगा पे। आठ पहर यानी 24 घंटे तक चर्चा चली मालिक के बारे में और लाखों लोगों का अंधेरा हटा दिया, लाखों पुण्यात्मा अपनी शरण में ले ली। कहते सोचल सीधर मैं करूं और दुनिया तो न मारना चाह थी और परमात्मा ने डूंडा ठा दिया, दूने शिष्य बने। केसो कहत कबीर से पूछे बाता बीन, गरीब दास क्यों उतरे ऐसे मुलक मलीने। अब केशव रूप में परमात्मा आप प्रश्न कर रहे हैं, हमारी आंखें खोलने के लिए तो वहां विराजमान थे। केशो कहत कबीर से वो पूछे बाता बीन, गरीब दास क्यों उतरे ऐसे मुलक मलीन। हे परमात्मा तू सतलोक ने छोड़ के और इसे गंदे लोक में क्यों आया, मलिन लोक में। खान पान की इच्छा जित नाही अदर विमान, गरीब दास यो लोक जीवे छाड़ा मुलक अमान। झूठ कपट इस लोक में पाप पुन व्यवहारे, गरीब दास के सो कहे कैसे रहने तुम्हारे। होए होए। अब केशव बता रहे हैं, केशव जी कह रहे हैं झूठ कपट इस लोक में और पाप यो पाप पुण्य व्यवहार और गरीब दास के शोक है कैसे रहन तुम्हार। गरीब दास जी कह रहे हैं केशव ने बोला आप क्यों कर रहे हो इसे गंदे लोक में, आप इनकी भलाई करो, ये आपके पास छपड़ रहे आपकी दुरुक्ति करते हैं। नहीं अदर सर्वरता हां नहीं अदर कोई बाग, गरीब दास के शोक है क्यों नहीं देते त्याग। इन छोड़ दो चलो वहां लोक में। नहीं फुहारे गगन में नहीं मानसी गंग, गरीब दास जग देख कर हमरा चतमन भंग। नहीं नगर है नहीं नगर है नूर के, नहीं बगड़ तिस हीर, गरीब दास के शोक है तुम क्यों रहो कबीर। अब सतलोक में जो वहां सतलोक में बता रहे कि वहां ऐसे सुंदर बाग हैं, सदा बहार वृक्ष हैं, हीरे पन्ने ज्वारों के तो वहां पहाड़ के पहाड़ पड़े हैं, और ऐसे सुंदर लोक ने छोड़कर आप इस गंदे लोक में क्यों रह रहे हो। धन कबीर कुर्बान जा ऐसी रहन तुम्हारे, गरीब दास के सो कहे तू छोड़ गंद संसार। धन कबीर कुर्बान जा पल पल चरण जुहार, गरीब दास ते क्यों तजे वो हीरे लाल पहाड़। ये धरती है छार की, यानी ये तो मिट्टी से बनी हुई, और वो वहां की धरती अजर अमर है जैसे बहुत सुंदर तत्व की बनी है। ये धरती है छार की मुर्द फरोसी पिंड, यहाँ के सभी जो ये रचनाएं हैं सब नासवान है, मुर्द फरोसी है नासवान। गरीब दास के शोक है या चरण धरे सर दंड, इस पृथ्वी पर तो पादरण तभी पाप लगे। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे करोड़ जीव एक दिन में मारे, इतने जीव जंतु रोज मरते, कहते इस पद पैर धरते भी पाप लगे प्रभु आप क्यों आ गए यहां पर। तो परमात्मा कहते भाई मेरे दुख न मैं जानू क्यों आया हूं, मेरे बच्चे यहां पर आए हुए हैं इनको निकालने आया हूं। मुर्द जमी आसमान है ये मुर्द चंद और सूर, गरीब दास के शोक है मुर्द बजावे तूर। यहां तो सभी नासवान है, ये चंद्रमा सूर्य सब नासवान है। नरक भरे तिस उदर में रुद्र भरी सब दे, गरीब दास के शोक या मुनस्यो मुख खे। अपनात्मा ये है अमरवाणी परमात्मा की, इसके अंदर कितना निर्णायक ज्ञान दिया है, क्योंकि एक सेंटेंस ने सुलझाने के लिए आपको बहुत प्रमाण देने पड़ते हैं। अब यहां के बताया है कि नरक भरे तिस उदर में रुद्र भरी सब दे, गरीब दास के शोक है इसे मनुष्या मुख खे, कि जो मनुष्य यहां काल ने बना रखे हो तुम ये बना रखे हैं, इनके पेट में तो गोबर भरा टट्टी पेशाब थूक, और इनकी देह में सारे नस जो जितने सारी लहू से भर रखी खून से रक्त से। अपने आत्माओं आप कभी देखते हो एक्सीडेंट में कोई कुत्ता मरा हुआ देखा हो और उसके उसके अंदर से क्या निकला, टट्टी की तह पड़ी है, उसकी आंत की तह निकली पड़ी है, खून निकल कर बह रहा है, तो कहते यो शरीर ऐसा शरीर है इस यहां के मनुष्य का, और यही ऐसा ही स्वरूप है ऊपर सतलोक में। ऐसनाविरम अकायम, ये जो सुक्रम अकायम ऐसनाविरम वो सबका वहां नूरी शरीर है, ऐसे गंदा शरीर नहीं है। इसमें कदे बीपी हाई हो जा, कभी लो हो जा, कभी कोई बीमारी, कभी किसी प्रकार का है, तो इसमें भक्ति क्यों करेंगे, ये भक्त है परमात्मा से केसो कह रहे हैं। तो कबीर जी कहते हैं वो व्यवस्था मैं इनकी करूंगा, तो ये मेरी मान ये तो क्या कहते हैं, नरक भरे तिस उदर में रुद्र भरी सब दे, रुद्र रुधिर माने खून की भरी हुई सारे शरीर। गरीब दास केशव कहे या मुनखो मुख खे, राम नाम कैसे जपें ये नरक नगीन शरीर। ओए होए कहते इसमें क्यों कर भक्ति करेंगे बेचारे, इतना गंदा शरीर दे रखा, कदे जाड़ दुख है, कदे शर्म दर्द, कदे कुछ हो गया, कोई टेंशन, 36 प्रकार के पंगे ला दिए। तो परमात्मा कहता मेरे पास सारी जड़ी है, इन भक्ति भी करवाऊंगा जब मेरे मेरी शरण में पड़े रहे तो, लगे रहे तो। राम नाम कैसे जपें ये नरक नगीन शरीर। गरीब दास केशव कहे बिलंबे कहां कबीर, जुन्नी संकट में पड़े फिर जुन्नी से संग। गरीब दास के शोक है भाव भक्ति सब भंग, सो योजन पर लगत है या दुनिया की गंध। गरीब दास के शोक है यो हार्ड चाम का फंदे। पुण्यात्मा ध्यान से सुनना, कहते हैं इस संसार की, इस पृथ्वी की गंध, यहां से निकली हुई दुर्गंध जो इनके निकल रही, यहां से कभी कुछ गैस, कभी कुछ गैस शरीर में से, जैसे कोई टट्टी करका रहे वह बदबू है, कितने फूक रहे हैं कपड़े, कहते वहां तक 100 योजन तक, एक योजन 4 कोस का होता है, 400 कोस, और एक कोस लगभग 3 किलोमीटर की। तो ऐसे कहते हैं 1200 किलोमीटर तक तो यहां की बदबू दुर्गंध वहां तक सता रही है, और तुम रह रहे यहां पर, यहां तो कितनी लगेगी। कहते हैं 100 योजन पर लगत है या दुनिया की दुर्गंध। गरीब दास के शोक है हाड चाम का फंद, हाड चाम की नाक है हाड चाम का मुख। गरीब दास के शोक है तज कबीर यो रुख, सुन कबीर सुर भेद हूं केसो कसत करंत। गरीब दास गंदे मनुष्य ये झगड़ा आन करंते। सुन कबीर सुर भेद हूं, हे कबीर देव मैं आपसे खास बात कहता हूं, और गरीब दास ये गंदे मनुष्य आपसे झगड़ा आन करंत, आपके साथ झगड़ा करते हैं। आगे क्या बताते हैं, बिष्टा जिनकी देह में ये मगन फिरे दिन रात। कहते कि इनके शरीर में तो गोबर भरा टट्टी, बिष्टा जिनके उदर में पेट में, अरे अंडी पाके अंडे मगन फिरें दिन रात, नो कर दूंगा, 1 मिनट में मृत्यु हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, बीपी हार्ट अटैक हो जाए, इन बेकला निनो भी को ना, तुम के बकवाद करे, तेरी औकात क्या है। कहते बिष्टा जिनकी देह में ये मगन फिरे दिन रात। गरीब दास के शोक है जिन सिर जम की गात, ये तो बकवाद कर रहे हैं, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, फलाने को ऐसे मार दूंगा, ऐसा सेठ बन जाऊंगा, और उनके काल इसके ऊपर इंतजार कर रहा, इसकी कब टिकट काटू। आप देखते हो प्रतिदिन समाचार पत्रों में भी आप पढ़ते हो, देखते हो, वैसे भी अपने आसपास पड़ोस में देखते हो, कोई दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, 1 सेकंड का भरोसा नहीं। जैसे एक व्यक्ति नाइट सर्विस में जा रहा था, नाइट सर्विस में इसलिए गया था कि वापस आना है, मुझे बहुत जरूरी काम है, और वो एक्सीडेंट हो गया, मर गया राम है रस्ते में, तो कहां गई हुआ उसकी जल्दी। तो यहां कहते हैं जम सिर जिनकी घात, काल तन्यो बाट देखे सांस पूरे होते इसने खत्म करूं, और ये यहां बकवाद घट रहे हैं। कहते हैं बिष्टा जिनके उदर में ये मगन फिरे दिन रात। गरीब दास के शोक है जिन सिर जम की गात, गात माने दाव, काल जो है दाव लगाए बैठा है किसने खत्म करूं। गात उसको कहते हैं जो बुरे इरादे से किसी को मारने के लिए कहीं दाव लगाए बैठा है, उसको घात बोलते हैं। अजब अंकारी मनुष्य हैं सुन कबीर मम ज्ञान, अजब अंकारी यानी बड़े अभिमानी लोग हैं। गरीब दास के शोक है या इन्हें कैसा ज्ञान और ध्यान है। कहते तुम किसने पढ़ान लाग रहे हो, किसने ज्ञान दो हो, ये तो इतने अभिमानी, इतने बकवादी, और तुम इनको ऐसा अमृत ज्ञान पिलाना चाहते हो। अब परमात्मा क्या बोलेंगे वो सुनना देखना। अजब अहंकारी मनुष्य है सुन कबीर मम ज्ञान, गरीब दास के शोक है इन्हें कैसा ज्ञान और ध्यान। सुन कबीर मन भावने तुमरी बात अगाध, गरीब दास के सो कहे तुमसे तुम ही साध। अब क्या बोलते हैं परमात्मा, क्या बोले? सुन के सब अब बंद ना कहे कबीर संदेश, गरीब दास सर्वलोक में है हमरा परवेश। कहते मैं तो सारे लोका में हूं, कि गंदा हो चाहे अच्छा हो, सब जगह मेरे ही कंट्रोल में है। मैं सब जगह हूं, सब सर्वव्यापक भी मैं ही हूं, यानी सर्वगतम ब्रह्म मैं ही हूं। हाट चाम की देह में, अब क्या बताते हैं? एक तरफ तो किस स्वरूप में हमें बता रहे हैं, जहां बैठे थे तुम किस किन किस को समझाना चाह रहे, इतने गंदे लोग, ऐसा गंदा शरीर इनका, हाड चाम की देह विष्टा भरा उदर में है, अरे इतने बकवादी अहंकारी। तो परमात्मा क्या बताते हैं, वह उपस्थित भगत जन बैठे थे साधु संत, कहीं इनका दिल ना टूट जाए, सच्चाई बताने के लिए क्या बताते हैं। हाड चाम की देह में दूध रतन सर्वंत, गरीब दास घट पिंड में ऐसे है भगवंत। जैसे एक गाय का, भैंस के हाड चाम का मांस का शरीर है, और उसमें इतना अमृत जैसा दूध निकलता है, उसका प्रोसीजर बताते हैं। कहते हैं थन दूधी कूची पाड़ के जय कोई देखे दूध, गरीब दास इस पंड में हाड चाम और गूद। अब क्या बताते हैं कि जैसे भैंस या गाय, जब तक गाय जैसे है वो बिना धनाई अधन्य गाय है, कुंवारी है, जब तक उसके पेट में बच्चा नहीं है, जब तक वो उसका बच्चा उत्पन्न नहीं होता, तब तक उसके चाहे सारे शरीर का ऑपरेशन कर ले, दूध नहीं पावे। और जब वो नए दूध होती है, गर्भवती होती है, फिर बच्चा उत्पन्न करती है भैंस और गाय, और कहते हैं उस हाड चाम की देह में फिर अमृत दूध सर्वंत। कहते इस कहते थन दूधी को चीर के जय कोई टो है दूध, ढूंढे दूध, गरीब दास इस पिंड में हाड चाम और गूद। हाड चाम की देह में जैसे अमृत दूध सर्वंत, गरीब दास गट पिंड में ऐसे मिले भगवंत। इसी शरीर में, इस गंदे शरीर में, कहते परमात्मा ऐसे प्राप्त कराऊंगा, ऐसे मिलेगा कैसे, जैसे भैंस नई जब होत है अमृत दूध दे अंचे। अब प्रोसीजर बता रहे हैं कि जैसे भैंस है गर्भवती होती है, गर्भ धारण करती है, तो फिर उसमें सारा प्रोसीजर होता है, बच्चा बनता है, और बच्चा बाहर आता है तो दूध भी उसी शरीर में, हाड चाम के शरीर में दूध भी बनता है। ऐसे ही कहते परमात्मा, कहते मैं अपना वचन शक्ति से भक्ति प्रवेश करूंगा अपनी प्यारी आत्माओं में, और उस मंत्र के जाप से फिर भक्ति रूपी बालक बनेगा, और फिर वो परमात्मा ऐसे इस हाड चाम के शरीर में ही वो परमात्मा ऐसे हमें प्रकट होगा, जैसे इस हाड चाम के शरीर में फिर दूध मिल गया, उसका प्रोसीजर है कोई। तो कहता ऐसा ही एक प्रोसीजर, ऐसा मंत्र मेरे पास है, इस आड़चाम के शरीर में इनको भगवान मिलाऊंगा। हमरे ही उनिहारे है हमरा सृजनहार, गरीब दास विधि भेद सुने उदरे मुक्त द्वार। हमरे ही उनिहार है, ओए होए। अब सबको बता रहे हैं परमात्मा कि परमात्मा मेरे हमारे ही जैसा है, अपने ही जैसा है, यानी नर रूप है, नर स्वरूप है, मनुष्य जैसा है, मनुष्य दृश्य है, साकार है। हमरे ही उनिहार है हमारा सृजनहार, उनिहार माने हमारा ही स्वरूप, मेरे जैसा, हमारे जैसा है। और कबीर साहब कह रहे हैं विधि भेद सुन उदरे मुक्त द्वार। अब क्या बताते हैं, जुग सत्र हम ज्ञान दिया जीवन समझा एक, ओए होए। गरीब दास घर घर फिरे यो धरे कबीरा वेख। परमात्मा कबीर जी आप बता रहे हैं कि 70 युग तक हो गया, मैंने ये इनके पीछे पड़ा ने, और एक भी ढंग से मेरी बात को मान नहीं रहा। 70 युग हम 70 युग जुग 70 हम ज्ञान दिया जीवन समझा एक। गरीब दास जी कहते हैं गरीब दास घर घर फिरे वो धरे कबीरा वेख, यानी कि तो जिंदा रूप बना ले। कहीं पर किसी रूप में, कभी किसी रूप में, किधर जुलाहे के रूप में, कहते सौ सौ भेख बना कर भगवान भेष बदल के हमारे पीछे फिर रहे हैं। और सत्तर युग हो गए युग ज्ञान देते ने, पर परमात्मा का सच्चा भगत बहुत ही मुश्किल से मिलता है। कल्प कोट युग बीतिया हम आए तिस बेर, ग्रीब दास के सौ सुनो हो देन भक्ति की टेर। गरीबदास कबीर परमात्मा कह रहे हैं कि एक केसव सुन, कल्प कोट युग बीत गए हम आए तिस बेर, अब फिर हम आए हैं। सत्तर युग सेवन किए किने न बुझी बात, गरीबदास मैं समझावत हूं मोहे लगावे लात। परमात्मा कहते मैं इन्हें सच्चा ज्ञान दूं, ये मेरे लात मारे, मुझे बूंदा अच्छा बोल रहे हैं। स्वर्ग मृत्यु पाताल में हम बैठे कई बार, गरीब दास दर दर सजा है मार मार के मारे, जा भी मैं जाता हूं सच्ची बात कहता हूं इनके हित की कहता हूं, और मेरे पीछे पड़ देने को मार 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 इस करने को मां झूठ बोलो, ये नकली संत मेरा पीछा लगा देते मेरे ही बच्चों को भ्रमित किए हुए। अमरी जात अपूरे भी पूर्व रहन हमार, गरीब दास कैसे जुड़ा ये पश्चिम के कातार, हम है पूर्व ठेठ के हम उतरे ओगट घाट, गरीब दास जीव दक्षिण के यो ना मिलती साट, जिन हमारी सीख लगी ही काटों जम जंजीर। जिन मेरी बात मान ली, मेरी शिक्षा दीक्षा ले ली, उसके काल के बंधन को सदा के लिए समाप्त कर दूंगा। गरीब दास के सौ सुने हैं ऐसे कहे कबीर, फिर बाजी बेदना रचे वे ने जीव अवंत, गरीब दास सतलोक में अमर पटा पावंत। अपने आत्माओं क्लियर कर दिया समरवाणी ने, गीता जी अध्याय नंबर 8:18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और को प्राप्त होगा और शाश्वतम स्थानम सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 में स्पष्ट किया है, उसमें कहा कि तत्वदर्शी संत इस संसार रूपी उल्टे लटके के हुए वृक्ष के विषय में सब पाठ के साथ बताता है, वो तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत मिलने के पश्चात उस परम अक्षर ब्रह्म की, उस परम पद की, उस परमेश्वर की परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद ये भक्त जन फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। और जिस परमात्मा ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, यानी जिससे ये संसार वृक्ष बना है, उसकी भक्ति करो। तो यहां परमात्मा सब कह रहे हैं, जिन हमारी सीख ली काटो जम जंजीर, गरीब दास के सब सोने ऐसे कहे कबीर, फिर बाजी बेदना रचे वे ने जीव अवंते। जिन मेरी शिक्षा ले ली, आखिरी सांस तक भजन करते रहे इस मर्यादा में, फिर वो सदा के लिए सतलोक चले जाएंगे, वो अमर पटा पाएंगे। अमर पटा, ओए अमर पटा, सदा के लिए परमानेंट उसी का हो जाना।